നമോ സീതാടം നമോ ആയിരി ആടി നമോ ഉദയ ഛായാടി മംഗളം കുംഭ മംഗളം കാര്യം പ്രധാനം സർവധർമാണം ജയനം आज कौन कौन है? मानस,
हाँ जी
यू नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, व्हाट हैपेंड?
मैं हवाई में था वेकेशन के लिए, सो टाइम जोन्स डिडंट मैच अप.
रिजुम, यू वर ऑल्सो देयर, बिकॉज यू वर देयर और नॉट, बिकॉज वी डिडंट हियर फ्रॉम यू, बट यू वर ऑन द डैशबोर्ड ऑनलाइन.
या वी वर देयर.
Oh, but we couldn't hear you. Okay, fine. We'll start from the fifth chanda of this third dhal. Chaganya, sorry, Uttam Antaratma, हमने देख लिया था. निराज कैसे होते हैं? अंतरात्मा के तीन भेद हैं. उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा एंड जघन्य अंतरात्मा. उसमें से उत्तम अंतरात्मा कौन है? शुद्ध उपयोगी मुनिराज. कैसे वाले मुनिराज? जो अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के परिग्रहों से रहित है. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट अंतरंग परिग्रह एंड बहिरंग परिग्रह. अंतरंग परिग्रह कितने हैं? हाँ, 14 अंतरंग, 14 अंतरंग परिग्रह. बहिरंग है 10, 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 24, 24 परिग्रह के भेद होते हैं, राइट? हमारे मुनिराज का इन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग है, राइट? तो अंतरंग परिग्रह में कौन कौन से परिग्रह होते हैं? मिथ्यात्व, देन विचार कषाय एंड देन नोनो कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जिगुप्सा, विवेक पुरुषवित नपुंसकवित. करेक्ट. ये 14 प्रकार के, तो मुनिराज के सारी कषायों का अभाव हो जाता है क्या? हाँ, इनके मिथ्यात्व का तो अभाव है, लेकिन उनकी क्रोध मान माया लोभ इन सबका भी अभाव है.
तीन चौकड़ी का अभाव है.
करेक्ट. तीन चौकड़ी का, तीन चौकड़ी का अर्थ ये हुआ कि ना इनके जो कुछ भी होगा दैट वुड बी नॉट इंटेंशनल, संकल्पी, संकल्प लेकर नहीं होगा जो भी, क्योंकि इनका सारा आरंभ का त्याग है, इनका कुछ व्यवसाय नहीं है, इनको किसी से द्वेष बैर नहीं है, सबसे समता मैत्री है सब जीवों से. तो उनके जो मूल कषाय होती थी, जो दूसरों के कारण होती थी, पांच पापों में पड़ने के कारण होती थी, ये सारी कषाय अब उनके कारण ही नहीं बचे, उनको उतना क्रोध ही नहीं बचा. उनके सहज में ये वाले कषाय के जो तीव्रता के परिणाम है वो नहीं होते, लेकिन संचुलन कषाय के परिणाम अभी भी उनके होते हैं, वो भी छठे गुण स्थान में. करेक्ट. तो मुख्यता से उनको जब बड़ी वाली कषाय चली गई तो क्या बोल देते कि उन्होंने उस परिग्रह का भी क्या किया है, त्याग किया है. तो अंतरंग एंड बहिरंग ऐसे दो प्रकार के परिग्रह रहित शुद्धोपयोगी आत्मज्ञानी दिगंबर मुनिराज वो अंतरात्मा है, राइट? शुद्ध उपयोगी मुनिराज किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक पाए जाते हैं? हु विल टेल मी? आपको 14 गुण स्थान पता होंगे, 14 14 गुण स्थान होते हैं। इसमें से आई एम आस्किंग मुनिराजों के गुण स्थान कितने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड शुद्धोपयोगी मुनिराजों के गुण स्थान कितने हैं आउट ऑफ 14 गुण स्थान? हु विल टेल मी? समीर, समीर आर यू देयर?
यस
या मुनिराज किस गुण स्थान से स्टार्ट हो जाते हैं 14 गुण स्थानों में से?
सिक्स
सिक्स गुण स्थान, वेरी गुड। सिक्स गुण स्थान से मुनिराज चालू, मतलब सिक्स गुण स्थान इज द बिगिनिंग ऑफ द सेज फेज ऑफ हमारी डेवलप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, राइट? हम वी बिकम साधु परमेष्ठी। एक्सलेंट। शुद्धोपयोगी मुनिराजों के कितने गुण स्थान है रिजु? रिजु आर यू देयर?
सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन?
द क्वेश्चन इज, सी द मुनिराज गुण स्थान ऑफ मुनिराज स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स्थ गुण स्थान, राइट? छठे गुण स्थान से हमारे मुनिराज स्टार्ट हो जाते हैं। आई एम आस्किंग यू, शुद्धोपयोगी मुनिराज किस गुण स्थान से शुरू होते हैं?
I'm not sure. Is it eight?
Manas, your viewpoint?
शुद्ध उपयोग कहाँ से शुरू होता है?
करेक्ट, वही पूछ रहा हूँ। मुनिराज जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज
सेवेंथ कनिष्ठान से।
सेवेंथ गुण स्थान से कब तक चलता है ये?
खाली खाली मुनिराजों को?
हाँ, मुनिराजों की पूछ रहा हूँ।
सेवेंथ टू ट्वेल्थ,
सेवेंथ से ट्वेल्थ तक, एग्जैक्टली। थर्टींथ को वो मुनिराज भगवान बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी गुड। देखो, मुनिराजों के गुण स्थान है 6 से लेके 12 तक, 6 टिल 12, ठीक है। 13 इज ऑफ केवली, 14 इज ऑफ केवली, वन इज संयोग केवली, वन इज अयोग केवली, ठीक है। तो मुनिराजों के 6 से 12 तक ये गुण स्थान है। इसमें से छठवें गुण स्थान में भी शुद्ध उपयोग में नहीं है, वो बाहर है, ठीक है। दिस इज प्रमत्त विरत, छठवा गुण स्थान। इन सातवें में गुण स्थान में जो वो शुद्ध उपयोग में आए, तो सातवें में भी वे आत्मा में है। आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, ये सारे गुण स्थानों में मुनिराज आत्मा में रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट
नहीं,
ठीक है। छह से लेके, अच्छा, तो नाउ इफ आई लास्ट यू, भावलिंगी मुनिराजों के गुण स्थान कौन कौन से हैं? 7 से 12 कि 6 से 12? बड़े लोगों में से कोई
6 से 12?
हाँ,
6 से 12
मुनिराजों का पूछ रहा हूँ मैं। भावलिंग मुनिराज, आत्मज्ञानी मुनिराज, भावलिंग मुनिराज, हाँ, अरे कोई भी, कोई भी बताएंगे। भावलिंगी मुनिराजों के गुण स्थान कहाँ से स्टार्ट होते हैं?
तो वो बोलते कि छठे सात में झूलते हैं, तो छठा भी हो गया।
आई एम आस्किंग, आप बताइए। आई
आई वुड से छठे से 6, फ्रॉम 6 टू 12।
करेक्ट या या छठवें से 12वें तक, मतलब जस्ट बिकॉज छठवें गुरुस्थान में वो शब्दोपयोग में नहीं है डजंट मीन कि वो भाव लिंगी नहीं है, राइट? जस्ट उसी के लिए कंफ्यूजन के लिए वो क्वेश्चन पूछा था. ठीक, गुलिस्तान जो मुंजाजों से स्टार्ट होते हैं वो छठवे से स्टार्ट होते हैं, और छठवे गुलिस्तान में बाहर बाहर होने पर भी, मुनिराज का उपयोग बाहर होने पर भी डजंट मीन कि वे भावलिंगी मुनिराज नहीं है. ठीक है, जिस प्रकार चौथे गुलिस्तान में जीव हमेशा आत्मा की अनुभूति नहीं करता है, जैसे कि राम जी आत्मा की अनुभूति कर लिए एक बार, ठीक है ना, अब वो रावण से लड़ाई लड़ रहे हैं तो अब थोड़ी वो वहां पर युद्ध के प्रांगण में आत्मा की अनुभूति कर रहे होंगे बाणों को छोड़ते हुए, बट स्टिल ही सम्यक दृष्टि और नॉट. राइट, सो इट इज नॉट अ कंडीशन टू बी शुद्धोपयोगी टू रिमेन भावलिंगी. Just like it is not a condition to be samyak drishti, to always remain in atmanubhuti ki condition. ठीक है, शुद्धोपयोग बहुत अल्पकाल के लिए चौथे गुणस्थान में होता है, बट उसके कारण वो इतना एक छोटा सा 6 महीने के एक बार का डोज इज सो पावरफुल दैट इट डजंट लेट द दर्शन मोहिनी कर्म टू राइज. ओके, ऐसे ही छठवे सातवें गुणस्थान में संजुलन कषाय के उदय को नहीं होने देता. आप जब मुनिराज भगवान छठवे से सातवें में जाकर सातवें में आत्मा की अनुभूति करके आते हैं तो उस आत्मा की अनुभूति का प्रभाव उनके छठवें पर भी जागृत रहता है, जिससे संजुलन कषाय का उदय नहीं आ पाता, जिसके कारण उनका भाव लिंगपना बना रहता है. ठीक है, तो उत्तम अंतरात्मा को नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. हम चौथे नंबर के छंद पर है इसके, और इसकी लास्ट लाइन है, आई रीड दैट लास्ट लाइन. विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी. इन सिंपल हिंदी इट मीन्स अंतरंग और बहिरंग, ये दो प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है. नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें छठवें से 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज फिट होंगे या फिर सातवें से 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज? क्वेश्चन इज दिस, आई विल रीड द लाइन अगेन. अंतरंग और बहिरंग ऐसे दो प्रकार के परिग्रह के संग से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है. इसमें कौन से वाले मुनिराज है, 6 से 12 तक की क्लास वाले या 7 से 12 तक की क्लास वाले?
6 से 12.
आई विल रीड इट अगेन. अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है. और कोई इन सब लोगों में से, आई गॉट वन आंसर 6 से 12. एनीबडी अग्री, एवरीबडी हु डिसएग्रीज, एनीबडी हु डिसएग्रीज?
वो 7 से 12 नहीं होता?
आई एम आस्किंग, आप बताइए.
मुझे लगता है 7 से 12 है.
क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है?
अंतरात्मा बहिरंग पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन
ओके ठीक है
है
तो दोनों ही आंसर, दो ही ऑप्शन 6 से 12 और 7 से 12 हमारे पास दोनों आंसर आ गए. तो एनीबडी टू वोट फॉर 6 से 12, मानस अगेंस्ट और फॉर?
हाँ जी,
कौन सा आएगा? अरे सिंपल, द आंसर इज 7 से 12, क्योंकि शुद्धोपयोगी स्पेसिफाई किया है. शुद्धोपयोगी के हमने गुणस्थान देखे ना 7वें से 12वें तक, छठवें में उनकी शुद्धोपयोग नहीं बढ़ रहा है, तो छह ढाला में विशिष्ट विवक्षा है, उत्तम अंतरात्मा में सिर्फ शुद्धोपयोगी मुनिराजों को दिया है। जनरली वी कॉल ऑल द मुनिराज एज उत्तम अंतरात्मा, बट यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने स्पेशली क्या मेंशन किया कि जो विविध संग के बिना तो है, मतलब अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के बिना तो है, एट द सेम टाइम शुद्धोपयोगी है, ऐसे मुनिराज वो उत्तम अंतरात्मा है। ठीक है, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन डाउट इन दिस? हेलो,
नहीं।
जनरली हर जगह अलग अलग विवक्षा आती है, यहाँ पर उसके मंत्र आत्मा में सिर्फ शुद्ध उपयोगी निर्गाज किया गया है, निर्गाज आत्मा में जुटते नहीं है। आपको पता है जैसे सभी निर्गाज बैठे हुए हैं, वो छठवें सातवें गुण स्थान में है, नाउ ही वेंट टू सातवें गुण स्थान, अब वो सातवें गुण स्थान में गए तो अब उनको बारहवें गुण स्थान तक जाने में कितना टाइम लगेगा? डू यू नो? अंतर्मुरत एज इन लाइक बियरली, मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम, लाइक ऐसा नहीं है कि सातवें से बारहवें गुण स्थान के लिए बहुत टाइम लगता हो, दिवाले गुण स्थान में भी शुद्धों के लिए अंतर्मुहूर्त तक बैठ जाए तो चार घाते कर्मों का अभाव हो जाता है, तो उस अंतर्मुहूर्त से भी कम समय में, मतलब उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त नहीं है, मध्यम अंतर मुहूर्त है, मतलब वेल विद इन 48 मिनट, बहुत अंदर 48 मिनट, वेल विद इन ये मुनिराज इतने ऊपर के गुणस्थान में चले जाते हैं। उत्तम अंतर आत्मा वो भी उतने ही है जब तक वो अपने आत्मा में डूबे हुए हैं। ठीक है, नौ पांचवा जो छंद है हम उसको पढ़ते हैं, उसका एक डेफिनेशन देंगे मध्यम अंतर आत्मा, पांचवा वाला
घाति
मध्यम अंतर आत्म भेजे, जो मध्यम अंतर आत्मा है वे कौन है? देशवृत्ति एंड अनगारी। आपने दो ग्रंथों के नाम सुने होंगे, सागार धर्मामृत एंड अनगार धर्मामृत, नाम सुने हुए हैं?
नाम सुने हैं,
दो ग्रंथों के नाम सुने हुए हैं, सागार धर्मामृत अनगार धर्मामृत, किसने लिखे हैं, किसी को आइडिया है?
नहीं।
बहुत पुराने ग्रंथ हैं एंड ये बहुत पुराने विद्वान द्वारा लिखे गए हैं, मुनिराज के द्वारा लिखे हुए नहीं है, श्रावक है उनके द्वारा लिखे हुए हैं। हेलो,
नाम बताइए कौन सा ग्रंथ बोले आप?
सागार धर्मामृत एंड अंगार धर्मामृत। कोई बात नहीं, हम लोग अभी पंडित टोडरमल जी, धनंजय से कवि और भरत राय जी, दौलत राम जी, ईश्वर जी कासलीवाल, भागचंदी चांदेर, ये वाले विद्वानों को जानते हैं, ये बहुत रिसेंट है, 300-250 साल 300 साल पुराने विद्वान हैं। बट सागार धर्मामृत अंगार धर्मामृत ग्रंथ बहुत पुराने हैं।
अनुभव जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
ओके, कब से नहीं आ रही है?
अभी 5-1 मिनट से जब से आपने सागर अंगार का किया ना सब
ओके 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 हाँ तो सागर धर्मामृत एंड अंगार धर्मामृत ये एक बहुत पुराने विद्वान द्वारा विरचित है। आई डोंट थिंक आप लोगों को नाम पता होंगे। पंडित आशा धर जी नाम सुना है?
ओ, हा, हा, हा।
पंडित आशा धर
उन्होंने आशाधर जी ने रत्नाकरण श्रावकाचार्य में भी उसका कुछ रोल है।
I am not sure.
पता नहीं कहाँ मेरे ये तो
लेकिन
आशाधर जी का नाम सुना है बट I couldn't remember.
टीकाएं बहुत सारी करी है तो समाधि तंत्र टीका उनके उपलब्ध है शायद बाकी ये रिटन सागर धर्मामृत एंड अंगार धर्मामृत बाकी मैंने तो इसलिए पूछा आप लोगों से सागर और अंगार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीस वर्ड्स
अंगार
अंगार छठवा गुण स्थान एंड सागर इस पांचवा गुण स्थान हाँ
श्रावक सागर का श्रावक
मतलब सागर मतलब जो घर के साथ है अंगार मतलब जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है तो हमारे मुनिराज उनको अंगार बोलते हैं इन सागर तो यहाँ पर जो पंडित दौलत राम जी ने वर्ड लिया है अंगारी अंगारी मतलब मुनिराज लेकिन मुनिराजों की बात तो वो पिछली लाइन में कर रहा है कि भैया 7वें से लेकर 12वें तक गुणस्थान वाले मुनिराज उत्तम अंतरात्मा तो यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा में कौन से मुनिराज बचे छठवें गुण स्थान वाले तो सी हम जो 28 मूल गुणों का खंडित पालन बोलते हैं राइट वो एक्चुअली 28 मूल गुणों का खंडित पालन छठवें गुण स्थान में होता है 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें और 11वें गुण स्थान में 28 मूल गुणों का पालन होता कि नहीं होता मुनिराज के 28 मूल गुण 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में होते हैं कि नहीं होते हैं
होते हैं
क्या उन मूल गुणों का पालन 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में होता है कि नहीं होता है 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज एरिया समिति से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? अरे बताइए
तो उसकी चर्या नहीं होगी क्योंकि वो तो ध्यान में है
देखो 8वें गुण स्थान वाले मुनिराज यदि चलेंगे तो एरिया समिति से ही चलेंगे राइट
8वें भी वो तो सारे ध्यान के से हो गए
अरे बट जस्ट इन केस यदि 8वें गुण स्थान वाले मुनिराज को एक दिन आहार लेने का विकल्प हुआ तो वो एक बार खड़े होकर आहार तो लेंगे ना कि गुण स्थान वाले भाई खड़े होकर ही लेंगे भाई कितने नहीं लेंगे
परंतु 8वें गुण स्थान वाले जब आहार लेने जाएंगे तो फिर 6वें गुण स्थान में आ जाएंगे तो 8वें कैसे हम बोल सकते उसको
करेक्ट तो 7वें गुण स्थान या इसके ऊपर के मुनिराज इनके 28 मूल गुण तो है लेकिन इनके मूल गुणों के पालन करने की सिचुएशन ही नहीं आती तो अब वो उनके चलना ही नहीं होना है तो एरिया समिति क्या उनके कुछ रखना ही नहीं होना है तो प्रतिष्ठापना क्या ये वाले कोई भी 28 मूल गुण वे उनका उपयोग बाहर में इंद्रियों के पास आया ही नहीं है तो 5 इंद्रिय विजय जो कुछ भी वो कर रहे हैं तो अब लाइक जैसा छठवें गुण स्थान में उनके बुद्धि पूर्वक चल रहा है ऐसा नहीं चल रहा, अब तो वो आत्मा में डूबे हुए हैं, तो सहज में ही उनके पार में क्या चल रहा है उसका पता नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि इन्हें उपसर्ग जीत लिया, इन्हें इंद्रियां जीत ली। लेकिन उन्होंने इंद्रियां जीती तो बहुत पहले छठवें में ली थी, अभी तो वो स्वरूप में डूबे हैं, तो उनका ध्यान स्वरूप की तरफ है, तो बाहर कहीं उनका ध्यान जाता नहीं, करेक्ट। तो यहाँ अंगार में ही यानी छठवे गुण स्थान में ही मुनिराजों के सारे चरणा नियोक्ता, उनके सारे 28 मूल गुणों का पालन यहाँ पर होता है, इसके आगे पालन बुद्धि पूर्वक नहीं होता। तो उनके 28 मूल गुण तो विराजमान है, लेकिन अब उनके वो चर्य ही नहीं है वैसी वाली अभी के लिए, वो स्वरूप में डूबे हुए हैं, तो वहां पर फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती नहीं कि उनको किसी मूल गुण का आश्रय लेना पड़े, वो आत्मा के आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने इसलिए उन अंगारी मुनिराजों को जो कि अपने उत्कृष्ट आचरण से जैन दर्शन की ख्याति करते हैं, प्रभावना करते हैं, ऐसे मुनिराजों को मध्यम अंतरात्मा बोला। ठीक, मुनिराज सेम है, जस्ट इमेजिन यदि एक मुनिराज छठवें से सातवें गुण स्थान में एक अंतर मुहूर्त में कई बार आ रहे हैं, यू नो कई बार वो उत्तम अंतरात्मा बनते हैं, कई बार वो मध्यम अंतरात्मा बनते हैं, करेक्ट। ये वाला डिस्टिंक्शन पंडित दौलत राम जी ने हैज उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि वे स्वरूप के शुद्धोपयोग की महिमा बता पाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि लाइक आप मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए और देखिए मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे, ठीक है, मुनिराज ध्यान में बैठे होंगे तो आप बोलोगे अरे उत्तम अंतरात्मा मुनिराज की जय हो, एंड इससे मुनिराज का ध्यान टूट गया, मुनिराज बाहर आ गए, और फिर आप बोलोगे मध्यम अंतरात्मा वाले मुनिराज की जय हो, ठीक है, तो बाहर आ गए छत्री में आ गए, तो दैट डजंट मेक सेंस राइट। उत्तम फिर मध्यम फिर उत्तम फिर मुनिराज वापस उपयोग में चलेंगे, उत्तम अंतर मुनिराज तो मुनिराज है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मुनिराज, आपको गुणस्थान उनके पता नहीं पड़ सकते, करेक्ट। तो जितने भी भेद यहाँ पर किए जा रहे हैं ये वाले भेद हमारे ये समझने के लिए है कि ये वाला जो भेद किया गया ये किया क्यों गया, मुनिराज तो मुनिराज है अंतरात्मा अंतरात्मा है। तो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ शुद्धोपयोग, सबसे ऊंचा कोई यदि पद होता है छद्मस्थ अवस्था में तो वो शुद्धोपयोगी की आत्मा का होता है। छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज और तेरहवें गुणस्थान वाले भगवान इनमें कितना डिफरेंस है, मैथमेटिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज एंड 13th गुणस्थानवर्ती अरिहंत भगवान?
Mathematically, like as in number of gunstones, it's 7.
Not the difference of the levels of gunstan. Saat gunstan unke beech mein, chhatwa and 13th ke beech mein, correct?
Yeah.
If I see the judge, unki qualities ko. तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवली में और छठवें गुणस्थानवर्ती छद्मस्थ मुनिराज भावलिंगी मुनिराज में कितना डिफरेंस है, आप यदि उनके अंतर को देखो तो आत्मा को देखो तो इफ यू हैव टू डिराइव इक्वेशन ऑफ केवली फ्रॉम अ छठवा गुणस्थानवर्ती मुनिराज व्हाट वुड दैट इक्वेशन बी? आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ चौथे गुणस्थानवर्ती जीव इज इक्वल टू मिथ्यात्व माइनस अनंतानुबंधी माइनस मिथ्यात्व, मतलब आत्मा इसमें से आप मिथ्यात्व माइनस कर दो एंड अनंतानुबंधी माइनस कर दो इज इक्वल टू फोर्थ गुणस्थान अविरत सम्यक, अविरत सम्यक को में से डिडक्ट आप प्रत्यक्षानवरण पांचवा गुणस्थान। So what would be the equation of Chhatri Gunasthanvarti Muniraj if you want to derive the Kevali Bhagwan ka 15th Gunasthan?
Um, I'm not sure.
Visual? Tamiz? Manoj? Anyone?
Hello?
Yes?
I'm not sure, like, how to...
Okay. Anybody? Manoj, can you try?
आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हो प्लीज.
क्वेश्चन इज दिस, यदि मुझे छठवें गुणस्थान वर्ती मुझे आज किस स्टेज पर हूँ, एंड इफ आई हैव टू गो टू 13th गुणस्थान, हम दोनों में एक्चुअल डिफरेंस कितना है, मुझे क्या करना पड़ेगा. इसमें पहले गुणस्थान में मुझे चौथे में जाना है तो मुझे नित्यात्व एंड अनंतानुबंधी खत्म करनी पड़ेगी. छठवें गुणस्थान वर्ती मेरी राज को 13th गुणस्थान में जाने के लिए क्या करना है.
मैं बोलूं?
बताइए.
13th गुणस्थान माइनस शुद्ध उपयोग विल बी 6th गुणस्थान और वाइस वर्सा, 6th गुणस्थान प्लस शुद्ध उपयोग इक्वल्स 13th.
If I only add Shudupyog, then I go to 7th Gunasthan, no?
Shatva Gunasthan, Shudupyog is equal to 7th. Continuous Shudupyog.
That will make me reach 8th Gunasthan, 9th Gunasthan, 10th Gunasthan.
Yeah.
Give me definite equation that will directly land me. To Kevli. Matlab difference between Kevli and the Chadmas Muniraj is what? ज्यादा difference नहीं है. मुनिराज और अरहन भगवान में ज्यादा difference नहीं है. अरहन भगवान के पास संजुलन कषाय नहीं है, मुनिराज के पास संजुलन कषाय है. That's it. Because of संजुलन कषाय उनका ज्ञान पूरा नहीं खिला है. मुनिराज का ज्ञान पूरा नहीं खेला है, केवली का ज्ञान पूरा खिल गया है. यू रिमूव संजुलन कषाय डायरेक्टली, यू गो टू द 12th गुणस्थान, दैट इज द इक्वेशन ऑफ 12th गुणस्थान. 6th गुणस्थान माइनस संजुलन कषाय, दैट इज द इक्वेशन ऑफ 11th एंड 12th गुणस्थान. 11th मतलब 11th गुणस्थान का नाम उपशांत मोह. जब आप सारी कषायों का उपशमन कर देते हो आप वितरागी हो जाते हो. 12th का नाम है क्षीण मोह. क्षीण मोह गुणस्थान में आप क्या करते हो, सारी कषायों का नाश करते हो, क्षय करते हो. एंड द मोमेंट 12th गुणस्थान काम थोड़ी ही देर में कौन सा गुणस्थान आता है, तेरवा. वो कब आता है, यू एड केवल ज्ञान, यू रिमूव ज्ञानावर्ण. सिंपल इक्वेशन ऑफ 13th गुणस्थान वुड बी 6th गुणस्थान माइनस संचलन माइनस ज्ञानावर्णी. ज्ञानावर्णी के साथ दर्शनावर्णी साथ नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इफ वी सी जो सातवें छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं, अरिहंत भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई यदि आत्मा है तो वो वाले मुनिराज है. मतलब छठवा वाले मुनिराज या 12th वाले मुनिराज, सारे के सारे छद्मस्त मुनिराज. क्यों? अरिहंत भगवान ने चार कषाय चौकड़ी का भाव किया है और उनसे जस्ट एक लेवल नीचे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाले ये मुनिराज है. So if you are talking about the Dev of Sarvat Siddhi, जो अगले भाव में आके मोक्ष जाएंगे, and if you are talking about a Jain Muniraj right now, जिनको अभी अगले 100 भावों में भी मोक्ष नहीं होना है, ठीक है, लेकिन अभी भी शुद्ध उपयोगी हैं, right now. Hello.
हाँ.
यदि मुनिराज शुद्ध उपयोगी हैं, शुद्ध उपयोग से च्युत होंगे, उसके बाद वे देवगति में जाएंगे, फिर वापस मनुष्य हो सकते हैं, फिर देव हो सकते हैं, फिर शायद सम्यक को छोड़ भी दें, और फिर शायद निगोद तक चले जाएं और फिर वापस, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल. यट वेन ही इज इन सिक्स्थ गुण स्थान, जिस समय ये चीज छठवें गुण स्थान में है, उस समय वो सर्वार सिद्धि के देव जो अगले भाव में भगवान बनने वाले हैं, वो देव इस जीव के सामने, इस छठवें गुण स्थान वर्ती आत्मा के सामने बहुत छोटे हैं, कुछ भी नहीं उनकी वैल्यू. क्योंकि ये वाले मुनिराज तीन गुण स्थान, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं. करेक्ट. सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, वो तो शंकर देव का स्तवन है, लेकिन उसी समय जो हमारे मुनिराज हैं, इनको भी सारे के सारे जितने भी तीन उसमें ऊंचे पद माने जाते हैं, वो इन मुनिराजों को नमस्कार करते हैं सबके सब. करेक्ट.
हाँ जी.
मुनिराज मतलब यू नो, और चारों गतियों में सिर्फ मनुष्य गति में मुनिराज बन सकते हो आप. चारों गतियों में, देव और नरक गति में सिर्फ चार गुण स्थान पाए जाते हैं, एक से चार तक, दैट्स इट. ठीक है. तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में भी कॉमन देखेंगे तो पांच गुण स्थान तिर्यंच गति में हो जाते हैं, पांचवा और मिल जाता है. बट मनुष्य गति इज ओनली सच जिसमें 14 सारे के सारे गुण स्थान और गुण स्थान 20 दशा का भी उदय, यहाँ मनुष्य गति में ही पॉसिबल है. राइट. उसमें भी एक्सट्रीम मनुष्य गति के सबसे बड़े मुनिराज, सबसे बड़ा जो होता है किसी, वो मुनिराज होते हैं. इसलिए पांच परमेश्वर में साधु ये मंगल है, उत्तम है, चरण है. क्या चित्तारी शरणम पवज्जामी, अरहंता शरणम पवज्जामी, सिद्ध शरणम पवज्जामी, साहू शरणम पवज्जामी, साहू लोगोत्तमा. नमो लोए सब साहूनम. मुनिराजों का अनंत उपकार है, क्योंकि एक तो उनके पास संजुलन कषाय शेष है, संजुलन कषाय शेष है तो उनके पास सहज में ही उपकार करने की परिणति है, और उस परिणति का ये प्रभाव है जिसके कारण इन ग्रंथों की रचना होती है. आप अकेली अरहंत भगवान को रखिए और मुनिराजों को रिमूव कर दीजिए. लेट्स से एक जीव छठवें गुण स्थान में आएगा और छठवें के साथ सीधे वो तेरहवें में चला जाएगा. लेट्स ट्राई टू मेक दिस व्यवस्था. ठीक है. तो मैंने दीक्षा ली, मैं अभी छठवें गुण स्थान में, मैंने 28 निर्गुणों का खंडित पालन किया एंड राइट सीधे सीधे मैं अगले बार अपनी आत्मा में डूबा और सीधे 13 गुण स्थान आ गया. आई बिकेम पूरा वीतरागी, पूरा सर्वज्ञ. राइट. डू यू सी एनी प्रॉब्लम इन दिस हैपनिंग? मतलब इतनी सारी जो मुनिराजों की लेयर दी, छठवा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा, ठीक है, और इसमें इतने सारे गिरने के प्रोविजन एंड बार बार कमिंग बैक टू द सिक्स्थ गुण स्थान, ये वाली व्यवस्था बनाई. राइट. यदि ऐसा होता कि सीधा ये आत्मा मतलब ध्यान करेगा, ध्यान करके मूल गुणों का पालन 28 का उन्होंने उसने प्रतिज्ञा ली, ध्यान में बैठा, सातवें गुण स्थान में आया और सीधे स्टेबल हो गया, एक बार चढ़ने के बाद गिरा ही नहीं, ऐसी व्यवस्था होती तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? कैन यू थिंक ऑफ सम प्रॉब्लम इन दिस?
तो फिर जैसे दीक्षाली वैसे केवली हो गए, तो फिर मुनिराज
बुरा क्या है?
मुनिराज नहीं दिखेंगे वो उनके, वो क्या है कि फिर ग्रंथ वगैरह की रचना, उपदेश जो हमें मिलता है वो भी नहीं होगा मुनिराजों से.
करेक्ट. दैट्स द प्रॉब्लम. केवली हर काल में नहीं हो सकते, और केवली के पास उस राग का अभाव है जिस राग में वह कुछ ऐसा लिख दे कि किसी के समझाने पर उसको समझा दे. केवली भगवान की दिव्य ध्वनि भवि भागन वश जोगे वशाय, तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाय, भव्य जीवों का पुण्योदय हो और उनके योगों का ऐसी प्रवृत्ति हो, उनके सहज वचन योग हो, सहज उनके शरीर में कंपन हो, सर्वांग से उनकी वाणी निकले, सहज में वो निकलती है। केवल भगवान किसी को उपदेश देने के लिए दिव्य ध्वनि नहीं देते हैं, क्योंकि उनके तत्संबंधी राग का अभाव है। सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थान वाले मुनिराज स्वार्थी हैं, वो आत्मा के अर्थी हैं, वो अपनी आत्मा में लीन है, उनसे कुछ उपकार नहीं हो सकता। ये छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का अनंत उपकार है कि उन्होंने जिस कार्य के लिए अपना घर बार छोड़ा था, उस कार्य में जब उनका उपयोग स्थिर नहीं हो पाता तो वे सहज छठवें गुणस्थान में बाहर आते हैं और उस समय उस कार्य के पुरुषार्थ के चलते उस जाति के राग के उदय में उनके कारण ये पूरा मोक्ष मार्ग चलता है। सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज अपना अकेले का मोक्ष मार्ग साधते हैं, छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज सबका मोक्ष मार्ग साधते हैं। सातवें, आठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को देख के कोई मोक्ष मार्ग में लग सकता है यदि उसकी होनहार हो तो, बट वो किसी को उपदेश नहीं दे पाएंगे, वो किसी को अपने उत्कृष्ट आचरण से प्रभावित नहीं कर पाएंगे अभी वर्तमान में, राइट, क्योंकि वो अंतर्मुखी है अभी। तो जिसको मुनिराज का सच्चा स्वरूप पता है उसको तो पता है कि क्या है अभी मुनिराज शुद्धोपयोग में, मतलब ये मुनिराज कितने आनंद में है अभी। लेकिन जो अनजान है मुनिराजों के स्वरूप से, उसको तो छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों की परिचर्या की विशुद्धता देखकर ही प्रभावित होना पड़ेगा ना, उसको तो आत्मा का ठिकाना नहीं पता। उसको तो आठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज तो कोई आत्मा है, कोई बैठा है साधु जंगल में आंख बंद करके ध्यान में, उसको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो भीषण गर्मी में किसी मुनिराज को नंगे पैर एकदम तपती हुई जमीन पर चलते हुए देखते हैं, सिर्फ दिन में एक बार आहार लेते हुए देखते हैं, ग्रंथ उनके पढ़ते हैं लिखे हुए, तो आप समझ रहे हैं आचार्य परमेष्ठी का आचार्य का काम, उपाध्याय परमेष्ठी का उपाध्याय का काम, ये सारा काम छठवें गुणस्थान में होता है, सातवें गुणस्थान में नहीं होता। आचार्य मोक्ष मार्ग के नेता कहे जाते हैं, मोक्ष मार्ग के संचालक कहे जाते हैं, नेता तो अरहंत भगवान है, मोक्ष मार्ग का संचालन करते हैं वो, इज अ मैनेजर ऑफ मोक्ष मार्ग। किस गुण स्थान में करते हैं?
छठवें
में। तो नाउ टेल मी, छठवां गुण स्थान इज इम्पोर्टेंट और सातवां गुण स्थान इज इम्पोर्टेंट?
वो जीव खुद के लिए सातवां इम्पोर्टेंट है, परंतु दूसरों के लिए छठा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें वहां से मोक्ष मार्ग का मार्ग मिलता है, इसलिए दूसरे के लिए छठा उपयोगी होगा। और फिर भी वैसे,
हाँ बोलिए,
फिर भी वैसे वो भगवान की ध्वनि भी खिरती है, तो वो भी गणधर भी सभी भगवान की जो ध्वनि झिलते हैं तो वो रचना करते हैं, तो वो भी छठे गुण स्थान में ही होएंगे के नहीं के? तो
द्वादशांग की पूरी रचना छठे गुण स्थान में ही हो रही है, द्वादशांग का खेलना तो तेरहवें गुण स्थान में है। द्वादशांग निकला जब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि से, वो तो हुआ तेरहवें गुण स्थान में, बट तेरहवें गुण स्थान के नीचे जब उसको गूंथा गया चारण योगों में, तो वो छठवें गुण स्थान में गूंथा गया।
तो अगर वो अगर छठवें गुण स्थान में वो नहीं चिलते, तो फिर वो परंपरा, वो उपदेश, भगवान का उपदेश, फिर परंपरा उसकी वहां ही खत्म हो जाएगी ना,
क्योंकि भगवान तो चले गए, महावीर भगवान को गए हुए 2500 साल हो गए। अभी तक यदि मुनिराज नहीं होते और उनके ग्रंथ नहीं होते तो उनका कुछ मार्ग बचता थोड़ी। नथिंग डॉक्यूमेंटेड इज एज गुड एज नॉट डन, लाइक समथिंग दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इज नॉट डन। वो तभी तक जिंदा है जब तक जिन लोगों के सामने उसकी बातें होती थी वो लोग जिंदा है। द मोमेंट दे पीपल लीव, वो वाली चीज गायब हो जाती है, करेक्ट? फास्ट सो लाइक टेल मी, छठवां गुणस्थान, सो लाइक मानस, रमी, रिजुल, इफ यू आर गिवन टू वोट, So like you'll be voting for 6th Gunasthanvarti Muniraj or 7th Gunasthanvarti Muniraj? Tell me. ज्यादा उपकार ज्यादा महिमा किस मुनिराज की है, सत्रवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की के सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की?
सातवां गुण स्थान वाले की होगी, दोनों देह दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, मगर मगर मुनिराज की अपनी भूमिका के अनुसार वो अपनी अगर अपना स्वास्थ्य सोचते तो वो तो फिर साथ में से अपनी श्रेणी मानकर उसको तो मुक्ति जल्दी पानी है, तो इसके लिए वो शुद्ध उपयोगी ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए।
इसलिए ये वाला डिस्कशन इसलिए मैंने उठाया कि हमको पंडित दौलत राम जी का इंटेंशन यहाँ पर समझना है कि डिस्पाइट छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज महामुनिराज होने से और वो हमारे पास प्रत्यक्ष उपकारी होने से उनका उपकार अनंत है, लेकिन फिर भी उत्तम अंतरात्मा तो वे ही है जो इन हमारे उपकार के विकल्पों से भी भिन्न स्वरूप में ही लीन है। पंडित दौलत राम जी ने बहुत स्ट्रिक्टली प्रमोट किया यहाँ पर शुद्ध उपयोग को, उन्होंने बोला नो मैटर मैं जो कुछ भी अभी बोल पा रहा हूँ दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ छठवें गुणस्थानवर्ती मध्यम मंत्रात्मा मुनिराज, तो मेरे प्रत्यक्ष उपकारी हैं, लेकिन फिर भी मैं आदर्श उनके छठवें गुणस्थानवर्ती भूमिका को नहीं बनाऊंगा, मेरे लिए आदर्श तो उनकी उत्कृष्ट शुद्धोपयोग वाली भूमिका ही है, राइट तो उत्तम अंतरात्मा में उन्होंने डिस्पाइट नोइंग सी अनगारी शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अनगार धर्म इट्स लाइक द चार्टर इट्स द कोड ऑफ कंडक्ट इट्स द वे द मोक्ष मार्ग द पाथ टू लिबरेशन इज गवर्न्ड, मोक्ष मतलब मुनिपना यानी कि मोक्ष मार्ग, मुनिपना के 28 मूल गुण उसके चार्टर है, लाइक द constitution of Jainism Angar, it's like very base, at the base of Jainism it is, correct? yet bahar ka charter theek hai, what is more important is the charter is made up in order that you could be very well inside yourself contented, आप अपने अंदर रह पाओ अच्छे से, इसके लिए बाहर 28 मूल गुणों की बहुत बड़ी शील्ड बनाई गई थी, तो there is no use of this shield if the purpose to which it was made is not there, it's absent, यदि आत्मा ही नहीं है तो 28 मूल गुणों के पालन से क्या, तो अंतरात्मा वही उत्कृष्ट है जिनको आत्मा में लीन है और मध्यम वो लिए जो कि ज्ञान और ध्यान में तपोरक्त है और छठे गुणस्थान में वर्तन करते हैं, ठीक है? Anybody has any doubts in this? अभी ऐसा नहीं, हमें बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान में से कौन से मुनिराज बड़े हैं कौन से छोटे हैं, सारे एक ही चीज के अलग अलग समय पर अलग अलग पर्याय, एक ही मुनिराज अभी छठवें में होते हैं फिर सातवें आठवें नौवें दसवें बारहवें में जाते हैं, मुनिराज तो एक ही है तो चीज तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि छठवें गुणस्थानवर्ती जी की कम विनय होती है और सातवें गुणस्थानवर्ती जी की ज्यादा विनय होती है, बट इफ आई हैव टू आइडियलाइज वन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अंतरात्मा देन द शुद्धोपयोग स्टेट अंतरात्मा उत्तम अंतरात्मा स्टेट इज दैट स्टेट विच आई शुड आइडियलाइज, ठीक है? तो मध्यम अंतर आत्म है जे देशवृत्ति अनगारी, एक तो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और दूसरे पांचवें गुणस्थानवर्ती देशवृत्ति श्रावक, ये मध्यम अंतर आत्मा है, फाइन यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन अब हुआ?
नहीं।
no question. So, मुझे एक question है. Is it right that Pandit Daulataram ji ने एक मुनिराज को और एक श्रावक को एक ही category में रख दिया? Is it right? Should it be done? मध्यम अंतर आत्मा में उन्होंने पांचवें गुण स्थान वर्ती देशप्रति श्रावक को भी रखा और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को भी रखा. बोलिए.
एक के तीन कसाई चौकड़ी का भाव है, एक को दो कसाई का भाव है,
फिर चौथे वाले को भी
दोनों को मध्यम बोला है. बट आई गेस मे बी कंपैरिजन में तीन ही उन्हों के पास रहेंगे, मध्यम उत्तम और
साइंटिफिक डिस्टिंक्शन किया है दौलत राम जी ने, एकदम साइंटिफिक. फर्स्ट ही हैड हिज प्रायोरिटीज क्लियर. पहले उन्होंने बोला द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज शुद्धोपयोग, सो हूएवर इज इन शुद्धोपयोग गोज इन द उत्तम कैटेगरी. द सेकंड फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टर, चारित्र. तो किसी के पास एक देश चारित्र हो या सकल चारित्र हो, ही शुड हैव चारित्र. यदि वो चारित्रवान है तो वो मध्यम अंतरात्मा है, पीरियड. He did not question whether you have complete charitra or partial charitra. You have charitra enough. It qualifies you to be in the second category, Madhyam Antaratma. So very in a very hidden way, Pandit Daulat Ram ji bata rahe ki hamari life ki priorities kya hai. Are atma mein leenta hi hamara charam, ekdam extreme hamara jo soul intention, like जिसके लिए हमारी हर एक सांस होनी चाहिए कि मैं स्वरूप में लीन हो जाऊं. बाहर आते ही मुझे पांच इंद्रियों की पराधीनता है, आठ कर्मों के उदयों की पराधीनता है, आपस में परिवारजनों की पराधीनता है, इच्छाओं की पराधीनता है, संयोगों की पराधीनता है, शरीर की पराधीनता है. द मोमेंट आई गेट इनसाइड माई सोल, गेट विद इन, वो सारी पराधीनताएं तुरंत, ना आठ कर्म गए, ना परिवार वाले कहीं गए, ना शरीर कहीं गया, बट तुरंत पराधीनता चली गई. ये शुद्धोपयोग का फल है, तत्काल फल, तुरंत आपको स्वाधीन बनाता है, सर्वशक्तिमान बनाता है. करेक्ट. फर्स्ट थिंग माय एवरी पुरुषार्थ इज फॉर शुद्धोपयोग ओनली. एंड इन ऑर्डर टू हैव शुद्धोपयोग, जब मैं आत्मा में नहीं रह पाता तो माय सेकंड प्लान इज, जब आत्मा में नहीं मन लगता है तब क्या, तब मुझे चारित्र में प्रवृत्ति करनी है. दैट इज मध्यम अंतरात्मा. छठवें गुण स्थान में हूँ, मैं पांचवें गुण स्थान में, आई शुड हैव चारित्र मेरे पास. ठीक है. तो पहला डिस्टिंक्शन, उत्तम अंतरात्मा इज ऑन द बेसिस ऑफ शुद्ध होती हो, मध्यम अंतरात्मा इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना आपके पास चारित्र है, थोड़ा सा भी है देन यू आर मध्यम अंतरात्मा. एंड दैट्स व्हाई ही हैज पुट. तो यहाँ पर उन्होंने इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा और पांचवें गुण स्थान वर्ती छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज एक है, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दे बोथ हैव चारित्र, वन हैज कंप्लीट चारित्र, अनदर हैज अ लिटिल पार्शियल. ठीक है. एंड जघन्य में उन्होंने बोला द थर्ड एंड द लीस्ट प्रायोरिटी, मतलब ये तो ऐसा है कि जैसे कि देखो भैया, हमको अच्छा है कि हम लोग एकदम व्हाट डू आई से, छह रस के बिना का भोजन करें, एकदम नीरस भोजन करें, मतलब बेस्ट केस है कि हमें भोजन ही नहीं करना पड़े, राइट? बेस्ट केस. करना पड़े तो मिडिल केस है, यदि करना पड़े उत्तम के भोजन ही नहीं हो, मध्यम यदि हो तो भैया एकदम रासुक सात्विक शोधा हुआ ऐसा भोजन हो, और यदि जघन्य को भी होना है तो भाई मांसाहार की बात तो आ ही नहीं सकती ना हमारे यहाँ. तो मांसाहार इज रूल्ड आउट विदाउट सेइंग, करेक्ट. पांच प्रकार के अभक्ष्य वो नहीं है विदाउट सेइंग, वो आप बोलो या नहीं बोलो वो जघन्य की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पर इक्विवेलेंट टू मांसाहार हियर इज मिथ्यात्व. तो जघन्य में यदि आपके पास शुद्धोपयोग भी अभी पूरा नहीं है, आपके पास चारित्र का भी अंश नहीं है, तो भी डोंट से दैट यू डू नॉट हैव इवन सम्यक्त्व. ठीक है, आप भोजन करते हो तो मतलब आप भोजन का त्याग नहीं आपके कोई बात नहीं, आप उत्तम भोजन वाले नहीं हो. आप प्रासुक भोजन भी नहीं करते कोई बात नहीं, आप मध्यम भोजन वाले नहीं हो. बट डोंट से कि आप आलू प्याज खाते हो, आप मांस खाते हो, आप नशाकारक अभक्ष्य लेते हो, आप रसघात करते हो, आप बहुघात करते हो. डोंट एटलीस्ट से दैट, करेक्ट. ये यहाँ पर दौलतराम जी कह रहे हैं द बेसिक क्वालिफिकेशन इज सम्यक्त्व. यदि ऊपर की दो बातें आपसे नहीं हो पा रही है तो ये वाली बात के लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है. जघन्य अंतरात्मा तो होना ही है, वो अविरत समदृष्टि है. इतना शुक्राचार्य है, मतलब पहले गुण स्थान में रहना इज नॉट इवन एन ऑप्शन. ठीक है, तो उसको तो वहां पर उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे पंडित दौलतराम जी. क्या उत्तम अंतरात्मा में शुद्धोपयोग को प्रमोट किया, मध्यम अंतरात्मा में चारित्र को, उत्कृष्ट चारित्र को प्रमोट किया, और जघन्य अंतरात्मा में ये बताया पंडित दौलतराम जी ने कि सम्यक्त इज नॉट अ उपलब्धि, की बड़ी चीज नहीं है आपकी लाइफ की. सम्यक्त इज द बेसिक नेसेसिटी. सम्यक्त हैज टू बी देयर. ऐसा नहीं आप सम्यक के बिना जीवन जीओगे, नहीं, आपको सम्यक के बिना नहीं जीना है. ठीक है, मतलब मिथ्यात्व इज नॉट इवन एन ऑप्शन. जैसे कि हमारे कॉलेज में आलू प्याज नॉट इवन ऑप्शन, ऐसे मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व इज नॉट इवन एन ऑप्शन. एनी हाउ यू डू इट, आई डोंट नो, बट यू हैव टू डू इट. एटलीस्ट जघन्य तो आपको रहनी है, वो अविरत समय दृष्टि है. इतना भी नहीं कर पाए तो समय दृष्टि से रहेगी. ये तीनों शिव मचारी हैं. सकल निकल परमात्म द्वैवृत्त घाती निभारी. परमात्माओं के दो विधि दो प्रकार होते हैं, सकल परमात्मा निकल परमात्मा. उनमें से घाती निवारी, घातीय कर्मों का निवारण करने वाले, नाश करने वाले श्री अरिहंत सकल परमात्म. श्री अरिहंत सकल परमात्मा है जो लोक और अलोक को देखती है, इसको निहारती है, जानते हैं. इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लास? सभी का जो हमने पढ़ा आज पांचवा श्लोक. No questions. Okay. Can you ask a few questions? Hello. Can you ask?
Yes.
The first question is to Sameer. Sameer, आप जंगल में गए, okay? एक मुनिराज, दो मुनिराज थे जंगल में, आपको बहुत सुनने की वजह से मुनिराज के दर्शन हुए हैं. एक मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं और एक मुनिराज उन दूसरे मुनिराज के पास बैठकर शास्त्र रचना कर रहे हैं. आप इन मुनिराज के विनय ज्यादा करेंगे, कौन से मुनिराज ज्यादा बड़े हैं? एक मुनिराज शुद्ध उपयोग में है और एक मुनिराज छठ गुण स्थान में है. समीर,
हम जो शिवपयोग में,
तो आप उनको स्पेशल नमस्कार करोगे और जो ग्रंथ लिख रहे हैं उनको ऐसे ही नॉर्मली, लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा
नहीं?
तो फिर
दोनों सेम ही है.
ओके, तो फिर आप शुद्धोपयोग वाले में जाके ज्यादा क्यों नमस्कार कर लिए?
नहीं,
exactly. तो see, हमने जो पढ़ा उसका ये मतलब नहीं है कि शुभोपयोगी मुनिराज बड़े हैं और शुभोपयोगी मुनिराज छोटे हैं. सारे मुनिराज एक से हैं, इसमें भी दिख रहे हैं आपको बाहर. भावलिंगी मुनिराज सारे एक है, नो मैटर इन विच गुणस्थान दे आर, उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. ये जो हम चर्चा पढ़ रहे हैं खुद के बनने के लिए पढ़ रही है, अंतरात्मा मुझे बनना है, वो तो बन गए अंतरात्मा. मुझे बनना है तो मेरे लिए आइडियलिस्टिक सिचुएशन इज टू बी शुद्ध उपयोग. मैं मेरी कोशिश है कि मैं हमेशा शुद्ध उपयोग में रहूं. नहीं रह पाऊं तो मैं एटलीस्ट आचरण की भूमिका में तो रहूं, क्योंकि उपदेश सामने वाले मुनिराजों को देखने के लिए नहीं है. ओके फाइन अंडरस्टूड. मतलब यहाँ से ये डिस्टिंक्शन नहीं समझ में हमको कि भाई जो ध्यान में बैठे हुए मुनिराज वो बड़े होते हैं, जो ध्यान के बाहर है वो छोटे होते हैं. ठीक है. नाउ दूसरा क्वेश्चन इज फ्रॉम रिजुल. रिजुल आपके घर में अंतरात्मा आए, ओके, मध्यम अंतरात्मा. तो ऑल द मध्यम अंतरात्मा कमिंग इन टू योर हाउस, यू वुड ट्रीट देम इक्वली और डिफरेंटली. मध्यम अंतरात्मा आपके घर में आए तो आप उन दोनों को इक्वली ट्रीट करोगे कि डिफरेंटली ट्रीट करोगे?
इक्वली.
आप पहले टाइप बताओगे अंतरात्मा के, कौन कौन से टाइप अंतरात्मा के? मध्यम अंतरात्मा पूछो. मध्यम अंतरात्मा है टू टाइप, एक मुनिराज जो छठे गुण स्थान में है अनगारी, और एक पांचवे गुण स्थान वर्ती श्रावक. अब आपके घर के अंदर एक मध्यम अंतरात्मा वाले मुनिराज आए और आपके घर के अंदर एक मध्यम अंतरात्मा श्रावक आए, वुड यू ट्रीट बोथ इक्वली और डिफरेंटली? मानस आप इक्वली
एट मैं दोनों सम्यक दृष्टि है तो और पंचवे में से तो उनको इक्वली इक्वली करेंगे, बट जो अंगार है उनको आई एम नॉट श्योर.
ओके सी नो 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 विल नॉट डू इट इक्वली. सी पांचवे गुण स्थान वर्ती जी दो इज मध्यम अंतरात्मा बट ही इज नॉट अ परमेष्ठी, वो साधु नहीं है. मुनिराजों की विनय अलग होती है, मुनिराजों को आहार देने के लिए नवधा भक्ति की जाती है. पांचवे गुणस्थानवर्ती श्रावक साधर्मी है, उसको हम अत्रो अत्रो तिष्टो तिष्टो उनका पाद प्रक्षालन उनको खड़े होके आहार ये नहीं कराएंगे. सो यू नॉट ट्रीट देम इक्वली एज इन लाइक आप जो पांचवे गुणस्थानवर्ती मध्यम अंतर आत्मा आ गया तो आप उनको भी मुनिराज जैसे ट्रीट करोगे? नो. मैं इसलिए डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखा है. डजंट मीन दे आर इक्वल. मुनिराज वो परमेष्ठी है, पांचवे गुणस्थान वर्ती जी परमेष्ठी नहीं है. मुनिराज की पूजन हो सकती है, पांचवे गुणस्थान वर्ती जी की पूजन नहीं हो सकती. ओके तो उनको मध्यम अंतरात्मा इसलिए बोला है क्योंकि दोनों चारित्रवंत है, बट सकल चारित्रवंत हमारे पूजनीय है, देश चारित्रवंत हमारे साधर्मी है, हमारे हमारी संगति करने जैसे हैं, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, पर वंदनीय नहीं है, उनका वंदना पूजन नहीं होती है. ठीक है ठीक है. ये डाउट आप लोग वो मिसकंसेप्शन नहीं लेना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन से. ठीक है. आई थिंक दीज टू आर द मेजर वर द मेजर क्वेश्चन. हमारा टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया है, नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू.
अनुपम जी,
हाँ जी.
मानस,
आई नो अबाउट द प्ले राइट, यू वॉन्ट द साइनिंग बाय द 15th, राइट?
हाँ Because अभी तो एक महीना है
approximately. Yeah. I'm already working on and writing one.
Okay. Because we were, Manas and I were wondering whether you had forgotten or whatever.
I am writing on it, so I was a bit occupied. वो हो जाएगा and मैं this week like by the next class मतलब before 15, I think we'll be able to read it or also record the time कितना लग रहा है.
Okay.
Thanks. Okay. 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 Sameer.
जवानी के ज्ञान से सुजलु करो सोवानी मस्कन मो सदा देत हो धोख